अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट फोर है, किताब चट्टानों में फायर, पेशकश मोहम्मद अजहर, मुसन्निफ इब्ने सफ़ी। तो आइए सुनते हैं पार्ट फोर। इमरान ने पहली बार इसके चेहरे से संजीदगी रुखसत होते देखी। इसकी सपाट आंखों में हल्की सी चमक आ गई थी और एक पल के लिए ऐसा मालूम हुआ जैसे वो किसी बच्चे का चेहरा हो। अगर वो बोटी मिल जाए, बारतोश ने गला साफ करके कहा। मैंने सुना है कि वो यहाँ किसी मकाम पर बकसरत मिलती है, लेकिन इसकी खासियत क्या है? इमरान ने पूछा। अभी नहीं, अभी नहीं, मैं फिर बताऊंगा। खूब, इमरान कुछ सोचने लगा, फिर इसने कहा, क्या सोना बनता है इससे? ओ, तुम समझ गए, बारतोश ने कहका लगाया। बोटी की पहचान क्या है? इमरान ने पूछा। पूरे पौधे में सिर्फ तीन पत्तियां होती हैं, गोल गोल सी। हम जरूर तलाश करेंगे, इमरान ने सर हिलाकर कहा। वो कर्नल की कोठी से ज्यादा फासले पर नहीं थे। बारतोश ने एक फरलांग लंबे नशीब की तरफ इशारा करके कहा, हमें वहां से अपनी तलाश शुरू करनी चाहिए। लंबी पत्तियों वाले कांटेदार झाड़ियां वहां बकसरत मालूम होती हैं। मगर अभी तो गोल पत्तियों की बात थी, इमरान बोला। ओ ठीक है, वो बोटी दरअसल ऐसी ही झाड़ियों के करीब उगती है, बारतोश ने कहा। वो दोनों नशेब में उतरने लगे। अनवर साहब कहाँ हैं? बारतोश ने पूछा। मैं नहीं जानता। मैं जानता हूँ, बारतोश मुस्करा कर बोला। वो कर्नल दरगाम की गुमशुदगी की रिपोर्ट करने गए हैं। क्या? इमरान चलते चलते रुक गया। हाँ, इन्होंने मुझसे यही कहा था। बेड़ा गरक हो गया, इमरान अपनी पेशानी पर हाथ मार कर बोला। आखिर इसमें हर्ज ही क्या है? मैं इन्हें नहीं समझ सकता। आप कभी नहीं समझ सकते मिस्टर बारतोश, इमरान जमीन पर उकड़ू बैठता हुआ बोला। फिर इसने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया, किसी ऐसी बेवा औरत की तरह जिसकी बीमा पॉलिसी जब्त कर ली गई हो। आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं, बारतोश बोला। रंग में भंग हो गया प्यारे मिस्टर बारतोश। क्या हुआ? कुछ नहीं, इमरान गुलूगीर आवाज में बोला। अब ये शादी हरगिज ना हो सकेगी। कैसी शादी? कर्नल जरगाम की शादी? साफ साफ बताइए, बारतोश इसे घूरने लगा। वो अपनी लड़की से छुपाकर शादी कर रहे हैं। ओह, तब तो वाकई, बारतोश कुछ कहते कहते रुक गया। वो चंद लम्हे कुछ सोचता रहा, फिर हंस कर बोला, मेरा ख्याल है कि कर्नल काफी मुअम्मिर होगा। बुढ़ापे की शादी बड़ी बेलुत्फ चीज है। मुझे देखिए, मैंने आज तक शादी ही नहीं की। ये बहुत अच्छी बात है, इमरान सर हिलाकर बोला। हम शायद किसी बोटी की तलाश में नीचे जा रहे थे। ओह हाँ, बारतोश ने कहा और फिर वो नशीब में उतरने लगे। नीचे पहुंचकर इन्होंने बोटी की तलाश शुरू कर दी। इमरान बड़े इन्हमाक का इजहार कर रहा था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसा खुद ही बारतोश को इस काम के लिए अपना साथ लाया हो। वो कोठी से काफी दूर निकल आए थे और कुछ इस किस्म की चट्टानें दरमियान में हाइल हो गई थी कि कोठी भी नजर नहीं आ रही थी। मिस्टर बारतोश, इमरान यक बेग बोला, अभी तो हमें एक भी खरगोश नहीं दिखाई दिया। मेरा ख्याल है कि इस तरह खरगोश पाए ही नहीं जाते। खरगोश? बारतोश ने हैरत से कहा। बेकार है, वापिस चलिए, इमरान बोला। मुझे पहले ही सोचना चाहिए था, यहाँ खरगोश बिल्कुल नहीं है। हम बोटी की तलाश में आए थे, बारतोश ने कहा। ओ लाहौल लवला हुआ था, मैं अभी तक खरगोश तलाश करता रहा, इमरान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। लेकिन वाकईतन अपने गर्दोपेश से बेखबर नहीं था। इसने दाएं हाथ वाली चट्टान के पीछे से तीन सर उभरते देख लिए थे। बारतोश की नजर खुद पौधों में भटक रही थी। अचानक पांच छह आदमियों ने चट्टानों की ओर से निकलकर इन्हें अपने नरगे में ले लिया। इन्होंने अपने चेहरे निकाबों में छुपा रखे थे और इनमें दो ऐसे भी थे जिनके हाथ में रिवॉल्वर थे। ये क्या है? बारतोश ने बौखलाकर इमरान से पूछा। पता नहीं, इमरान ने लापरवाही से अपने शानों को जंबी दी। क्या चाहते हो तुम लोग? दफ्तर बारतोश चीख कर इन लोगों की तरफ झपटा। लेकिन दूसरे लम्हे में एक आदमी ने इसकी पेशानी पर मक्का रसीद कर दिया और बारतोश तेवरा कर इस तरफ गिरा के फिर ना उठ सका। शायद वो बेहोश हो गया था। चलो बांध लो इसे, एक ने इमरान की तरफ इशारा करके अपने साथियों से कहा। एक मिनट, इमरान ने हाथ उठाकर कहा। चंद लम्हे इन्हें घूरता रहा, फिर बोला, मैं झूठ बोल रहा था, यहाँ खरगोश पाए जाते हैं। क्या बकवास है, जी हाँ, पकड़ो इसे, इसने फिर अपने साथियों को ललकारा। बस एक मिनट, इमरान ने लुजाजा से कहा, मैं जरा वक्त देख लूँ, मुझे डायरी लिखनी पड़ती है। इसने अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी की तरफ देखा और फिर मायूसाना अंदाज में सर हिलाकर बोला, मुझे अफसोस है, घड़ी बंद हो गई, अब आप लोग फिर कभी मिलें। तीन आदमी इस पर टूट पड़े। इमरान उछलकर पीछे हट गया। वो तीनों अपने एक ही जद में एक दूसरे से टकरा गए। फिर एक ने संभल कर इमरान पर दोबारा जिस्ट लगाई। अरे अरे, ये क्या मजाक है, इमरान ने कहते हुए झुककर इसके सीने पर टक्कर मारी और वो चारों छाने चित गिर गया। खबरदार, गोली मार दूंगा, इमरान ने जेब से फाउंटेन पेन निकालकर बकिया दो आदमियों को धमकी दी जो इसकी तरफ बढ़ रहे थे। इनमें से एक को हंसी आ गई। हाथ उठाओ अपने, रिवॉल्वर वाला गर्जा। इमरान ने चुपचाप अपने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। इसकी तरफ बढ़ते हुए आदमी में से एक ने अपनी जेब में से रेशम की डोर का लच्छा निकाला और जैसे ही इसने इमरान के हाथ पकड़ने की कोशिश की, इमरान ने फाउंटेन पेन इसके दाहिने बाजू पर रख दिया। वो यकलक चीख कर ना सिर्फ पीछे हट गया बल्कि उछल कर इन दोनों की तरफ भागा जिनके पास रिवॉल्वर थे, और फिर इसने एक हाथ से रिवॉल्वर छीन कर बेतहाशा इमरान पर फायर कर दिया। फिर इन्होंने इमरान की चीख सुनी, वो जमीन पर गिरकर नशे में लुढ़क गया। ये किया क्या तूने, वो आदमी चीखा जिसके हाथ से रिवॉल्वर छीना गया था। फिर वो फायर करने वाले को एक तरफ धकेल कर तेजी से आगे बढ़ा। चट्टान के सिरे पर आकर उसने नीचे देखा। इसे इमरान की टांगे दिखाई दी। बकिया जिसम एक बड़े से पत्थर की ओट में था, वो तेजी से नीचे उतरने लगा। फिर जैसे ही वो पत्थर पर हाथ टेकर इमरान की लाश पर झुका, लाश ने दोनों हाथों से इसकी गर्दन पकड़ ली। हमलावर ने बड़ा जोर मारा मगर इसकी गर्दन इमरान की गिरफ्त से ना निकल सकी। अब इमरान उठकर बैठ गया था। ऊपर दूसरे हमलावर भी चट्टान के सिरे पर आ गए थे। खबरदार, छोड़ दो वरना गोली मार दूंगा, ऊपर से किसी ने चीख कर कहा। इमरान के शिकार पर करीब करीब गशी से तारी हो गई थी, लिहाजा इसने यही मुनासिब समझा कि अब इसे अपने निढाल ही बना ले। मार दो गोली, इमरान ने कहा, मगर शर्त यह है कि गोली इसका सीना छेदती हुई मेरे कलेजे के पार हो जाए, या फिर अपने दोनों रिवॉल्वर यहाँ मेरे पास फेंक दो वरना मैं इसे जन्नत की तरफ रवाना कर दूंगा। इसकी गिरफ्त में जकड़े हुए नकाबपोश के हाथ पैर ढीले हो गए थे। ऊपर से किसी ने कोई जवाब ना दिया। इमरान ने आंख लगाई तो मैं ख़त्म करता हूँ उस किस्सा। ठहरो, ऊपर से आवाज़ आई। कितनी देर ठहरूँ, मैंने ऐसे वाहियात बिजनेस आज तक नहीं किया। भाई इस हाथ दे, इस हाथ ले, मार दो गोली, परवाह ना करो, किसी दूसरे ने कहा। अचानक एक फायर हुआ और वो सब बौखला गए क्योंकि सामने वाली चट्टानों से किसी ने दो फायर इन पर किए। इन्होंने भी एक बड़े पत्थर की आड़ ली और सामने वाली चट्टानों पर फायर करने लगे। इमरान ने बेहोश आदमी को तो वहीं छोड़ा और खुद एक दूसरे पत्थर की ओट में हो गया जो दोनों तरफ से मोर्चों की जद से बाहर था। वो सोच रहा था कि आखिर दूसरी तरफ से फायर करने वाला कौन हो सकता है। क्या कोठी तक इस हंगामे की खबर पहुंच गई? फिर इसे बारदोश का ख्याल आया जिसे वो ऊपर ऊपर छोड़ आया था। काफी देर तक दोनों तरफ से गोलियां चलती रहीं। इमरान बदस्तूर पत्थर की ओट में छुपा रहा। अगर वो भी जरा भी सर उभारता तो किसी तरफ की गोली इसके सर के पुरखचे उड़ा देती। इसके हाथ में अब भी फाउंटेन पेन दबा हुआ था लेकिन इसमें निब के बजाय एक छोटा सा चाकू था। इमरान ने जेब से इसका ढक्कन निकाल कर इस पर फिट किया और फिर इसे जेब में डाल लिया। अचानक फायर की आवाज़ें बंद हो गईं। शायद 3-4 मिनट तक सन्नाटा रहा। फिर सामने से एक फायर की आवाज़ आई लेकिन नकाबपोशों की तरह इसका जवाब नहीं दिया गया। थोड़े थोड़े वक्फे से 2-3 फायर और हुए मगर नकाबपोशों की तरफ से खामोशी ही रही। इमरान रींगता हुआ पत्थर की ओर से निकला और फिर इस तरफ बढ़ा जहां इसने बेहोश नकाबपोश को छोड़ा था, मगर वह वहां नहीं था। इसने अपने पीछे कदमों की आवाज सुनी, वो तेजी से मुड़ा लेकिन दूसरे ही लम्हे में इसके होठों पर मुस्कुराहट फैल गई क्योंकि आने वाला इंस्पेक्टर खालिद था। कहीं चोट तो नहीं आई, खालिद ने आते ही पूछा। फिर वो ऊपर की तरफ देखने लगा। आई तो है, इमरान ने बसूर कर कहा। कहाँ? जवाब में इमरान ने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, यहाँ, क्योंकि मुकाबला चंद पर्दा नशीन खवातीन से था। खालिद हंसता हुआ ऊपर चढ़ने लगा। इमरान इसके पीछे था। ऊपर इन्हें बेहोश बारतोश के अलावा और कोई ना दिखाई दिया। करीब ही रिवॉल्वर के बहुत से खाली कारतूस पड़े हुए थे। खालिद चटाने छलांगता हुआ काफी दूर निकल गया। इमरान बारतोश पर नजर जमाए खड़ा था। इतनी लंबी बेहोशी प्यारे बारतोश, इमरान बड़बड़ाया और इसके करीब ही इस अंदाज में बैठ गया जैसे कोई औरत अपने शौहर की लाश पर बैठकर बैन करते करते थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई हो। खालिद हाँता हुआ वापस लौट आया। भाग गए इसने इमरान के करीब बैठते हुए कहा, फिर थोड़ी देर बाद बोला, अब आप इनकार नहीं कर सकते। किस बात से, इमरान ने मफहूम लहजे में पूछा। इसी से कि आप इनसे वाकिफ नहीं हैं। ओह, मैंने बताया कि चंद खवातीन। इमरान साहब, खालिद एहतजाजन हाथ उठाकर बोला, आप कानून से टकराने की कोशिश कर रहे हैं। हमें मजबूर ना कीजिए कि हम आपके खिलाफ कोई कार्रवाई कर बैठें। यार अकल पर नाखून मारो या जो कुछ भी मुहावरा हो, इमरान बेजारी से बोला, अगर मैंने जानता ही होता तो वो पर्दा नशीन बनकर क्यों आते। वाह, खूब अच्छा पर्दा है कि चलमन से लगे बैठे हो। खालिद किसी सोच में पड़ गया। तुम यहाँ तक पहुँचे किस तरह, इमरान ने पूछा। आपकी तलाश में कोठी की तरफ गया था, वहाँ मालूम हुआ कि आप इधर आए हैं। यहाँ आया तो ये मामला दरपेश आया, मजबूरन मुझे भी गोलियां चलानी पड़ी। शुक्रिया, इमरान ने संजीदगी से कहा, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। क्या, खालिद इसे घूरने लगा। कोठी यहाँ से बहुत फासले पर नहीं है, क्या वहाँ तक फायर की आवाज़ें ना पहुँची होंगी। ज़रूर पहुँची होंगी, लेकिन फिर भी कोई इधर ना आया, हैरत की बात है या नहीं। है तो, खालिद बोला और इसे इस्तेफामिया नज़रों से देखने लगा। बारतोश ने दो तीन बार जंबिश की और फिर हड़बड़ाकर उठ बैठा। चारों तरफ फटी फटी आंखों से देखकर इसने आंखें मलनी शुरू कर दी, फिर उछलकर खड़ा हो गया। वो लोग इमरान की तरफ देखकर अकलाया। वो लोग सारी बोटियां खोद कर ले गए, इमरान ने मामूम लहजे में कहा। फिर उठता हुआ बोला, अब हमें वापस चलना चाहिए। वो कोठी की तरफ चल पड़े। बारतोश सहारे के लिए इमरान के कांधे पर हाथ रखे लंगड़ाता हुआ चल रहा था। इन्हें क्या हुआ था, खालिद ने पूछा। इन्हें बोटी हो गया था, इमरान बोला। कोठी के करीब पहुंचकर इमरान अपने नथे इस तरह सकोड़ने लगा जैसे कुछ सूंघने की कोशिश कर रहा हो। फिर वो अचानक चलते चलते रुक कर खालिद की तरफ मुड़ा। क्या आप भी किसी किस्म की बू महसूस कर रहे हैं, इसने पूछा। हाँ, महसूस तो कर रहा हूँ, कुछ मीठी मीठी सी बू, गालिबन ये सड़ते हुए शैतूतों की बू है। हर किस नहीं, वो कोठी की तरफ दौड़ता हुआ चला गया। फिर पिछले दरवाजे में दाखिल होते ही दोबारा उछलकर बाहर आ गया। इतने में खालिद और बारतोश भी इसके करीब पहुंच गए। क्या बात है, खालिद ने घबराए हुए लहजे में पूछा। अंदर कुछ गड़बड़ ज़रूर है, इमरान आहिस्ता से बोला। नहीं, अंदर मत जाओ, वहाँ स्नेथलिक गैस भरी हुई है, ये मीठी मीठी सी बू सी की है। स्नेथलिक गैस, खालिद बड़बड़ाया, ये किया है क्या बला। जहन को वक्ती तौर पर मुअत्तल कर देने वाली गैस, मेरा ख्याल है कि अंदर कोई भी होश में ना होगा, इमरान बोला। दफ्तर इन्होंने एक चीख सुनी और साथ ही कर्नल डिक्सन इमारत के अगली दरवाजे से उछलकर नीचे आ रहा। वो बड़े करब के आलम में अपने हाथों पर पैर पटक रहा था। चेहरा सुर्ख हो गया था, आंखें और नाक से पानी बह रहा था। खालिद ने इसे कुछ पूछना चाहा, लेकिन इमरान जल्दी से हाथ उठाकर बोला, इसका वक्त नहीं है, हमें अंदर वालों के लिए कुछ करना चाहिए, वरना मुमकिन है इनमें से कोई मर ही जाए। फिर इसने बारतोश को वहीं ठहरने को कहा और खालिद को अपने पीछे आने का इशारा करके बेतहाशा दौड़ने लगा। वो दोनों चक्कर काट कर कोठी के बैरूनी बरामदे में आए। यहाँ बू और ज़्यादा तेज थी। इमरान ने अपनी नाक दबाई और तीर की तरह अंदर घुसता चला गया। खालिद ने भी इसकी तकलीफ की, लेकिन थोड़ी ही दूर चलने के बाद इसका दम घुटने लगा। वो पलटने के मुतालिक सोच ही रहा था कि इसने इमरान को देखा जो किसी को पीठ पर लादे हुए वापस आ रहा था। खालिद एक तरफ हट गया और फिर वो भी इसी के साथ बाहर ही चला गया। इमरान ने बेहोश आरिफ को बाहर बाग में डालते हुए कहा, यार हिम्मत करो, इन सब की जिंदगी गया खतरे में है, क्या तुम 10-5 मिनट सांस नहीं रोक सकते। फिर किसी न किसी तरह इन्होंने एक एक करके इन सबको कोठी से निकाला, मगर सूफिया इनमें नहीं थी। इमरान ने पूरी कोठी का चक्कर लगा डाला, लेकिन सूफिया कहीं ना मिली। इन्हें होश में लाने और कोठी की फिजा साफ होने में करीब 2 घंटे लग गए। इनमें से किसी ने भी कोई ढंग की बात ना बताई। किसी को इसका एहसास नहीं हो सका कि वो सब क्यों और किस तरह हुआ। इमरान साहब, खालिद बड़े गुस्से में बोला, पानी सर से ऊंचा हो चुका है, अब आपको बताना ही पड़ेगा। ये वाकया ऐसा पेचीदा भी नहीं है कि मैं कुछ समझ ही ना सकूं। आखिर कर्नल की साहबजादी कहाँ गायब हो गई? अगर तुम समझ गए हो तो मुझे भी बता दो, मैं तो कुछ कहना ही चाहता। इमरान ने खिला के तवक्का बड़े खुश लहजे में कहा, या तो ये खुद साहबजादे ही की हरकत है या फिर किसी और की, जो इस तरह इन्हें उठा ले गया। खालिद बोला, इसे शिफ्टन ले गया है, इमरान ने कहा। तो आखिर अब तक वक्त बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? खालिद झुंझला गया। वक्त की बर्बादी से तुम्हारी क्या मुराद है? इमरान ने खुश लहजे में पूछा। जब मैंने शिफ्टन के मुतालिक पूछा था तो आपने लाइलमी जाहिर की थी, फिर आपने इस सिलसिले में इसका नाम क्यों लिया? तो फिर क्या शहनशाह बाउडाई का नाम लेता? देखिए, आप ऐसी सूरत में भी मामला को उलझाने से बाज नहीं आ रहे। यार मैं हूं कौन? इमरान गुरून झटक कर बोला, तुम सरकारी आदमी हो। इस सिलसिले में हम लोगों के बयानात नोट करो, कुछ तसल्ली दिलासे को रा दो। मुझे पर चंद पर्दा नशीन खवातीन ने हमला किया था, इसके हाल पर मलाल भी लिखो, वगैरह वगैरह। मैं आपको अपने साथ ऑफिस ले चलना चाहता हूँ, खालिद बोला। देखो दोस्त, मैं वक्त बर्बाद करने के लिए तैयार हूँ, मुझे किसी सख्त इकदाम पर मजबूर ना कीजिए। खालिद का लहजा कुछ तेज हो गया। अच्छा ये बात है, इमरान तंजिया अंदाज में बोला, क्या कर लेंगे जनाब? क्या इस कोठी के किसी फ्रू ने आपसे मदद तलब की है? आप हमारे मामलात में मदाखलत करने वाले होते ही कौन हैं? दूसरे लोग सोफों पर खामोश पड़े इनकी गुफ्तगू सुन रहे थे। किसी में भी इतनी शक नहीं रह गई थी कि इजहार ख्याल के लिए जबान हिला सकता। इनकी हालत बिल्कुल गैर मुतलिक तमाशाइयों की सी थी। इंस्पेक्टर खालिद ने इन पर एक उचकती नजर डालती और इमरान से बोला, इमरान साहब, मुझे महज कैप्टन फयाज का ख्याल है, वरना। अचानक बातोश ने मदाखलत की, इसने अंग्रेजी में कहा, लड़की के लिए तुम लोग क्या कर रहे हो? यकीनन ये इन्हें बदमाशों की हरकत मालूम होती है। हाई माई डियर मिस्टर खालिद, इमरान सर हिलाकर बोला, फिलहाल हमें ये देखना चाहिए कि सूफिया कहाँ गई। खालिद कुछ ना बोला, इमरान कमरे से बरामदे में आ गया। खालिद ने भी इसकी तकलीफ की। किसी गैर आबाद जगह पर मकान तामीर करना बहुत बुरा है, बारतोश ने कहा, जो दरवाजे में खड़ा चारों तरफ देख रहा था। अचानक इमरान बरामदे से उतर कर एक तरफ चलने लगा, फिर वह खुद रू गुलाब की झाड़ियों के पास रुक गया। ये एक स्याह रंग का जनाना सैंडल था जिसने इसकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराई थी। खालिद और बारतोश भी इसके करीब पहुंच गए। ओ, ये तो लड़की ही का मालूम होता है, इमरान कुछ ना बोला। इसकी नज़र सैंडल से हटकर किसी दूसरी चीज़ पर जम गई थी। फिर वो दफ्तर खालिद की तरफ मुड़ा। तुम तो सोनागिरी के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो गए, इसने खालिद से पूछा। ना सिर्फ सोनागिरी बल्कि मजाफात पर ही मेरी नज़र है, खालिद ने कहा, लेकिन इसका लहजा खुशगवार नहीं था। क्या यहाँ कोई ऐसा इलाका भी है जहाँ की मिट्टी सुर्ख रंग की हो? खालिद सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद इसने कहा, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? इमरान ने जमीन से सुर्ख चिकनी मट्टी का एक टुकड़ा उठाया जिसमें खफीफ सी नमी भी मौजूद थी। मेरा ख्याल है, इसने कहा, ये मट्टी किसी जूते के सोल और एड़ी के दरमियानी जगह में चिपकी हुई थी, और यहाँ कम अज कम दो दो मील के घेरे में मैंने कहीं नरम जमीन नहीं देखी। इसे देखो, इसमें अभी नमी भी बाकी है, खालिद ने इसे अपने हाथ में लेकर लटते पलटते हुए कहा। पल्टन पड़ाव के इलाके में एक जगह ऐसी नरम जमीन मिलती है, वहाँ दरअसल एक छोटी सी नदी भी है। इसके किनारे की जमीन इसकी मिट्टी में हमेशा नमी मौजूद रहती है। क्या वो कोई गैर आबादी जगह है? गैर आबाद नहीं कह सकते, कम आबाद जरूर है, वहाँ ज्यादा तर ऊंचे तबके के लोग आबाद हैं। क्या तुम मुझे अपनी मोटरसाइकिल पर वहाँ ले चलोगे? हो सकता है, खालिद ने सोचते हुए कहा। अच्छा तो ठहरो, इमरान ने कहा और कोठी के अंदर चला गया। इसने अनवर को मुखातिब किया जो एक सोफे पर पड़ा अफीनियों की तरह ऊंग रहा था। सुनो, मैं सूफिया की तलाश में जा रहा हूँ, तुम अगर अपनी जगह से हिल ना सको तो पुलिस को फोन पर इस वाकये की इतला दे देना। लेकिन आखिर ये नौकर कहाँ मर गए? बाहर हैं, अनवर ने कमजोर आवाज में कहा, सुबह ही वो शहर गए थे, अभी तक वापस नहीं आए। कर्नल बलराम का यह उसूल था कि वो हफ्ते में एक दिन अपने नौकरों को आधे दिन की छुट्टी देता था। इमरान चंद लम्हे खड़ा सोचता रहा, फिर इस कमरे में चला गया जहां इसका सामान रखा हुआ था। इसने जल्दी से सूटकेस से कुछ चीजें निकाली और इन्हें जेबों में ठूसता हुआ बाहर निकल गया। आसमान में सुबह ही सफेद बादल तैरते फिर रहे थे और इस वक्त तो सूरज की एक किरण भी बादलों के किसी रुकने से नहीं झांक रही थी। मौसम काफी खुशगवार था। इंस्पेक्टर खालिद की मोटरसाइकिल पलटन पड़ाव की तरफ जा रही थी। इमरान कैरियर पर बैठा ऊंग रहा था और उसके चेहरे पर गहरे तफक्कुर के आसार थे। खदोखाल की हिमाकत अंगेज सादगी गायब हो चुकी थी। पलटन पड़ाव के करीब पहुंचते पहुंचते तड़शक शुरू हो गई। खालिद ने मोटरसाइकिल की रफ्तार कम कर दी। आखिर हम वहां जाकर इन्हें ढूंढेंगे किस तरह, खालिद ने इमरान से कहा। आखा, ये CID इंस्पेक्टर मुझसे पूछ रहा है। इमरान साहब, इस मौके पर मुझे आपसे संजीदगी की उम्मीद है। हाँ, किसी न किसी ने ज़रूर कहा होगा कि दुनिया उम्मीद पर कायम है। वैसे इस इलाके में कोई ऐसा होटल भी है जिसमें निचले तबके के लोग बैठते हों? अगर ऐसा कोई होटल हो तो मुझे वहां ले चलो। इंस्पेक्टर खालिद ने मोटरसाइकिल एक पतली सी सड़क पर मोड़ दी, लेकिन रास्ता इमरान ने इसे रुकने को कहा। खालिद ने बड़ी उजलत से मोटरसाइकिल रोकी क्योंकि इमरान के लहजे में इसे घबराहट की झलक महसूस हुई थी। ये एक बड़ी पुरफिजा जगह थी। सड़क के दोनों तरफ मुस्ता जमीन थी और वहां फूलों के बागात नजर आ रहे थे। पलटन पड़ाव के हिस्से का शुमार तफरी गाँव में होता था। खालिद ने मोटरसाइकिल रोककर अपने पैर सड़क पर लटका दिए। यकायक इसने मशीन भी बंद कर दी और फिर वो ये भूल गया कि मोटरसाइकिल इमरान ने रुकवाई थी। इसने दाहिनी तरफ एक बाग में एक लड़की देख ली थी जो इसे मुतवज्जा करने के लिए रुमाल हिला रही थी। खालिद मोटरसाइकिल से उतरता हुआ बोला, इमरान साहब जरा ठहरिए। क्या वो तुम्हारी शनासा है? इमरान ने मुस्कुराकर पूछा। जी हाँ, खालिद हंसता हुआ बोला। बहुत अच्छा, तुम जा सकते हो मगर मोटरसाइकिल यहाँ तन्हा रह जाएगी। इमरान ने कहा और बाएं तरफ के बागात में नजर दौड़ाता हुआ बोला, मैं इधर जाऊंगा, इधर मेरी ममदूहा, शायद मैं गलत कह रहा हूँ। क्या कहते हैं इसे जिससे मोहब्बत की जाती है? महबूबा, 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 इधर मेरी महबूबा। अच्छा तो मैं चला, इमरान मोटरसाइकिल के कैरियर से उतरता हुआ बोला। बाएं तरफ एक बाग में से चंद ऐसी शक्लें दिखाई दी जिन्होंने अचानक इसके जहन में इस रात की याद ताज़ा कर दी जब सूफिया को ऑरेंज स्क्वैश में कोई नशावर दवा दी गई थी। इनमें से एक को तो इसने बखूबी पहचान लिया। ये वही था जिसकी टुकर होटल की वेटर से हुई थी। दो आदमियों के मुतालिक इसे शुबा था। वो यकीन के साथ नहीं कह सकता था कि ये दोनों इस सब इंस्पेक्टर के साथ थे या नहीं जिसने सनसान सड़क पर इनकी कार को रुकवा कर किसी बेहोश लड़की का मुतालबा किया था। इमरान इन्हें देखता रहा। वो चार थे, इनके साथ कोई औरत नहीं थी। इमरान बाग के रखवाले से खुबानी और सेबों की पैदावार के मुतालिक गुफ्तगू करने लगा। सूफिया आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देख रही थी लेकिन इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। कमरा आला पैमाने पर आरास्ता था और वो एक आरामदेह बिस्तर पर पड़ी हुई थी। इसने उठना चाहा मगर उठ ना सकी। इसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इसके जिस्म में जान ही ना रह गई हो। ज़हन काम नहीं कर रहा था। इस पर दोबारा गुनूदगी तारी हो गई थी और फिर दूसरी बार जब इसकी आंख खुली तो दीवार से लगा हुआ क्लॉक 8 बजा रहा था और सराहने रखा हुआ टेबल लैंप रोशन था। इस मतलब वो पहली ही कोशिश में उठ बैठी, थोड़ी देर सर पकड़े बैठी रही फिर खड़ी हो गई। लेकिन इस शिद्दत से चक्कर आया कि इसे संभलने के लिए मेज का कोना पकड़ना पड़ा। सामने का दरवाजा खुला हुआ था। वो बाहर जाने का इरादा कर ही रही थी कि एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ। आपको कर्नल साहब याद फरमा रहे हैं, इसने बड़े अदब से कहा। क्या डैडी? सूफिया ने मुतय्यरन अनलहजे में पूछा। जी हाँ। नकाहत के बावजूद भी सूफिया की रफ्तार काफी तेज थी और इस आदमी के अंदाज से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो महज इसकी वजह से जल्दी जल्दी कदम उठा रहा हो। वो कई राहदियों से गुजरते हुए एक बड़े कमरे में आए और फिर वहाँ सूफिया ने जो कुछ भी देखा उसे नींद जा कर देने के लिए काफ़ी था। इसने कर्नल जरगाम को देखा जो एक कुर्सी से बंधा हुआ था और इसके गिर्द चादर चार आदमी खड़े इसे कहरालू नजरों से घूर रहे थे। तुम दफ्तर, कर्नल चीख पड़ा। साथ ही इसने उठने की कोशिश की लेकिन हिल भी ना सका, बंदिश बहुत मजबूत थी। वो दोनों खामोशी से एक दूसरे की तरफ देखते रहे। अचानक एक भारी जबड़ों वाला आदमी बोला, कर्नल तुम लेवका से टकराने की कोशिश कर रहे हो। लेवका जिसे आज तक किसी ने भी नहीं देखा। कर्नल कुछ ना बोला, इसकी आंखें सूफिया के चेहरे से हटकर नीचे झुक गईं। भारी जबड़ों वाला फिर बोला, अगर तुमने कागजात वापस ना किए तो तुम्हारी आंखों के सामने इस लड़की की बोटियां काटी जाएंगी। एक एक बोटी, क्या तुम इसके तड़पने का मजा देख सकोगे? नहीं, कर्नल बेसाख्ता चीख पड़ा। इसके चेहरे पर पसीने की बूंदें फट आई थी। सूफिया खड़ी कांपती रही। इसका सर दोबारा चकराने लगा था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कमरे की रोशनी पर गुबार की तहें चढ़ती चली जा रही हूं। और फिर इस आदमी ने जो इसके साथ आया था आगे बढ़कर इसे संभाल लिया। वो फिर बेहोश हो चुकी थी। इसे आराम कुर्सी में डाल दो, भारी जबड़ों वाले ने कहा। फिर वो कर्नल से बोला, अगर तुम्हें अब भी होश ना आए तो इसे तुम्हारी बदबख्ती ही समझना चाहिए। कर्नल इसे चलने में घूरता रहा, फिर अपना ऊपरी होंठ भींच कर बोला, उड़ा दो इसकी बोटियां, मैं कर्नल जरगाम हूँ, समझे? तुम्हें कागजात का साया तक नहीं नसीब होगा। भारी जबड़े वालों ने कहका लगाया। कर्नल, तुम लेवका की कुव्वतों से वाकिफ होने के बावजूद बच्चों की सी बातें कर रहे हो। इसने कहा, लेवका की कुव्वत ने तुम्हें कहाँ से खोका है? वैसे तुम ऐसी जगह पर छुपे थे जहां फरिश्ते भी नहीं पर मार सकते थे। वो लेवका ही की कुव्वत थी जो दिन दहाड़े तुम्हारी लड़की को यहाँ उठा लाई। मैं कहता हूँ, आखिर वो कागजात तुम्हारे किस काम के हैं? यकीन जाना, तुम इनसे कोई फायदा नहीं उठा सकते। वैसे तुम अकलमंद जरूर हो कि तुमने अभी तक वो कागजात पुलिस के हवाले नहीं किए। मुझे बताओ, तुम चाहते क्या हो? मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। तुम्हारा दो जो दिल चाहे कर लो, कर्नल गुर्राया। अच्छा, भारी जबड़े वाले ने अपने एक आदमी को इशारा करते हुए कहा, इस लड़की के पैर का अंगूठा काट दो। इस आदमी ने मेज पर से एक चमकदार कुल्हाड़ी उठाई और बेहोश सूफिया की तरफ बढ़ा दी। ठहरो, अचानक एक गरजदार आवाज सुनाई दी, लेओ का आ गया। साथ ही एक जोरदार धमाका भी हुआ और सामने वाली दीवार पर आंखों को खैरा कर देने वाली चमक दिखाई दी और सारा कमरा धुएं से भर गया। सफेद रंग का गहरा धुआं जिसमें एक बिलचट के फासले की चीज भी नहीं नजर आ रही थी। धड़ाधड़ फर्नीचर उलटने लगा। कनरगाम की भी कुर्सी उलट गई, लेकिन इसे इतना होश था कि इसने अपना सरफरश ने ना लगने दिया। कमरे के दूसरे लोग नींद से चौंकने हुए कुत्तों की तरह शोर मचा रहे थे। अचानक कर्नल से कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। कोई इसका हाथ पकड़े हुए इसे एक तरफ खींच रहा था। कर्नल, धुएं की घुटन की वजह से किसी कुछ इस जगह बदहवास हो रहा था कि वो इस नामालूम आदमी के साथ खींचता चला गया। और भी थोड़ी देर बाद इसने खुद को ताजा हवा में महसूस किया। इसके सर पर खुला हुआ हवा और तारों भरा आसमान था। इसने अंधेरे में इस आदमी को पहचानने की कोशिश की जो इसका हाथ पकड़े हुए तेजी से नशे में उतर रहा था। इसने अपने कांधे पर किसी को लाद रखा था। इसके बावजूद भी इसके कदम बड़ी तेजी से उठ रहे थे। तुम कौन हो? कर्नल ने भराई हुई आवाज में पूछा। अली इमरान, MSC PhD, जवाब मिला। इमरान, शीश, चुपचाप चलिए। वो जल्द ही चट्टानों में एक महफूज जगह पर पहुंच गए। ये चट्टानें कुछ इस किस्म की थी कि इनमें घंटों तलाश करने वालों को चक्कर दिए जा सकते थे। इमरान ने बेहोश सूफिया को कांधे से उतारकर एक पत्थर पर लिटा दिया। क्यों, क्या है? कर्नल ने पूछा। जरा एक चिंगम खाऊंगा, इमरान ने अपनी जेब में टटोलते हुए कहा। अजीब आदमी हो। अरे, वो इमारत यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, कर्नल घबराए हुए लहजे में बोला। इसीलिए तो मैं रुक गया हूँ, लगे हाथों ये तमाशा भी देख लूँ। क्या यहाँ से फायर स्टेशन नजदीक है? क्या वहाँ आग लग गई है? कर्नल ने पूछा। जी नहीं, खामखा आबाद का पतंगड़ बनेगा, वो तो सिर्फ धुएं का एक मामूली सा बम था। जरा देखिएगा धुएं का बादल। कर्नल ने इमारत की तरफ नजर डाली। इसके बाहरी हिस्से पर धुएं का कसीब सा बादल मंडला रहा था। क्या वो बम तुमने? अरे तौबा, ला हौला वाला, इमरान अपना मुंह पीटता हुआ बोला। मैं तो इसे टूथपेस्ट का ट्यूब समझे हुए था, मगर मुझे इन विचारों पर तरस आता है क्योंकि इमारत से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हैं। मुझे पिछली रात ख्वाब में बशारत हुई थी कि कयामत के करीब ऐसा जरूर होगा, वगैरह वगैरह। इमरान, खुदा की कसम तुम हीरे हो, कर्नल दबे हुए जोश के साथ बोला। ओ वैसा ना कहिए, वर्णम कस्टम वाले ड्यूटी वसूल कर लेंगे, इमरान ने कहा। लेकिन आप यहाँ कैसे आ फंसे? पार्ट फोर यहाँ पर इख्तिताम पसीर होता है। किताब चट्टानों में फायर का बकिया हिस्सा पार्ट फाइव में समाप्त फरमाइए।